ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विकास के लिए वित्त पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर लौटे स्वदेश। राष्ट्रीय सभा द्वारा बजट संबंधी आर्थिक विधेयक और राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक पारित। देश के 31 जिलों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि। मास्क पहनने और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने की अपील। और भारत के हिमाचल प्रदेश में हालिया बारिश की वजह से करीब 69 लोगों की हो गई है मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्पेन में संपन्न विकास के लिए वित्त संबंधी चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के वीआईपी लॉन्ज में उप प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे और विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री ओली का स्वागत किया। इस अवसर पर नेपाली सेना की एक टुकड़ी ने प्रधानमंत्री को सलामी भी दी। स्वागत के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाली प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव अमृत बहादुर राय ने कहा कि विकास के लिए वित्त संबंधी चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेपाल की भागीदारी ने नेपाल की समृद्धि की यात्रा पर विभिन्न देशों का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। परराष्ट्र सचिव राय ने कहा कि यह दौरा देश हित और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने समृद्ध देशों द्वारा गरीब और छोटे देशों के लिए की गई निवेश प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन पर अपने विचार रखे थे। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने विभिन्न देशों के प्रमुखों के साथ बैठकें की, जिससे नेपाल के विदेशी संबंध और मजबूत हुए हैं तथा यूरोपीय देशों से नेपाल में पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी, उन्होंने बताया। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में बजट क्रियान्वयन से संबंधित आर्थिक विधेयक 2082 और राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2082 पारित हुए। बैठक में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पोर्टेल द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2082 और राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2082 बिना किसी संशोधन के बहुमत से पारित हुआ। विधेयक पर चर्चा के दौरान उठे सवालों का जवाब देते हुए अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पोर्टेल ने कहा कि बजट संतुलित तरीके से तैयार किया गया है और ये स्रोतों के अनुरूप है। बैठक में विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सांसदों ने कहा कि सोने चांदी के आभूषण नेपाली संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है, इसलिए बजट में लगाए गए विलासिता कर को वापस लिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्यान्न, तिलहन और डेयरी उत्पादों पर लगाए गए अग्रिम कर को हटाने से विदेशी उत्पादों का आयात बढ़ सकता है और नेपाली उत्पादों को बाजार नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा सांसदों ने विभिन्न सुधारों और समसामयिक समस्याओं के समाधान की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आने वाले मंगलवार 24 घंटे दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोयराला क्रांति और शांति के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोयराला की 102वीं जयंती के अवसर पर आज आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोडेल ने ये बात कही। नेपाल में हाल के दिनों में कोविड-19 संक्रमण के मामले विभिन्न जिलों में देखे जा रहे हैं। रोग नियंत्रण तथा महामारी निवारण महाशाखा के अनुसार 17 पूष 2081 से 19 आषाढ़ 2082 तक नेपाल के 31 जिलों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक 249 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिसमें से पिछले एक हफ्ते में 35 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं और एक व्यक्ति की कोविड-19 से मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ प्रकाश बुढ़ाथोकी ने बताया कि संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंत्रालय ने देशभर की 17 सीमा चौकियों पर स्थित स्वास्थ्य डेस्कों में कोविड-19 निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से मास्क पहनने, साबुन पानी से हाथ धोने या सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने का अनुरोध किया है। साथ ही कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले या संक्रमण जैसे लक्षण वाले लोगों से सेल्फ क्वारंटाइन आइसोलेशन में रहने की अपील की गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G फिजियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार.
अब बाकी समाचार. आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन और उपदान के स्थान पर योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू होगी. अर्थ मंत्रालय ने आज सभी मंत्रालयों, नियामक निकायों, सार्वजनिक संस्थानों, बोर्डों, समितियों और प्रतिष्ठानों को परिपत्र जारी कर योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू करने का निर्देश किया है. अर्थ मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि यह प्रणाली लागू नहीं की गई तो उससे उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारी नेपाल सरकार नहीं उठाएगी. वर्तमान में कर्मचारियों, मजदूरों और अन्य व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना पर आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 और सरकारी कर्मचारियों के लिए निवृत्त भरण कोष ऐन 2075 लागू है. इनके तहत 2075 साल से योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रभावी है. नेकपा एमएलए ने पार्टी के विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत किए जाने वाले संगठनात्मक प्रतिवेदन से संबंधित आवश्यक सुझावों सहित रिपोर्ट भेजने के लिए अपनी माथहतकी समितियों को निर्देश किया है. एमआरए के प्रचार विभाग प्रमुख राजेंद्र गौतम ने बताया कि विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत किए जाने वाले संगठनात्मक प्रतिवेदन से संबंधित लिखित सुझावों सहित रिपोर्ट भेजने के लिए प्रदेश और जिला समितियों को निर्देश किया गया है. एमआरए का दूसरा विधान महाधिवेशन आगामी भाद्र 20 से 22 तक ललितपुर के गोदावरी में आयोजित होगा. संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा, संघीयता, समानुपातिक और समावेशी प्रणाली को निरुत्साहित करने से जनता अन्याय का शिकार होगी. ललितपुर के गोदावरी में आयोजित लोकतांत्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ के केंद्रीय पदाधिकारी एवं सचिवालय की विस्तृत बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री गुरुंग ने कहा कि केवल समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली का नारा भर देने से काम नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि समृद्ध और सुखी नेपाली समाज के लिए शांति, स्थिरता, संघीय ढांचे पर आधारित समावेशी राज्य व्यवस्था, अधिकारों का उचित बंटवारा और सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व जरूरी है. बीपी राजमार्ग अंतर्गत काभरे पलांचोक खंड में परसों रविवार से रात के समय में 10.5 घंटा वाहन संचालन पर रोक लगा दी गई है. जिला प्रशासन कार्यालय काभरे ने बीपी राजमार्ग अंतर्गत काभरे भंज्यांग से सिंधुली की सीमा नेपाल थोक तक शाम 6:30 बजे से सुबह 5 बजे तक एक महीने के लिए यातायात संचालन प्रतिबंधित होने की जानकारी दी. कार्यालय द्वारा आज जारी की गई सार्वजनिक सूचना में मॉनसून सक्रिय हो चुकने की मौजूदा स्थिति में बीपी राजमार्ग में बाढ़, भूस्खलन के संभावित जोखिम को देखते हुए इस खंड में रात को एक महीने के लिए वाहन आवाजाही पर रोक लगाए जाने की बात उल्लिखित है. कर्णाली राजमार्ग अंतर्गत कालीकोट तिला गुफा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 गोठी भीर में सड़क टूटने के कारण बड़े वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है. कर्णाली की भेरीगंगा नगरपालिका वार्ड नंबर 8 कुइरे में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए. खेत में रोपाई करने के समय बिजली अचानक गिरी जिससे स्थानीय 27 वर्षीय दिल बहादुर शाही की मौत हो गई. ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सुरखेत ने दी. अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में हालिया बारिश की वजह से करीब 69 लोगों की मौत हो गई है. सीएम के मुताबिक 37 लोग लापता हैं, 110 लोग घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारी बारिश के कारण सड़क व पानी की परियोजनाओं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. साथ ही उन्होंने बताया कि बिजली की तारें और खंभे उखड़ने से भी बहुत अधिक नुकसान हुआ है. उन्होंने जानकारी दी है कि इस आपदा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है और गृहमंत्री ने कहा है कि वे पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे. उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार खड़ी है और पीड़ित परिवारों को 5,000 रूपये किराए के मकान में रहने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे. वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने लिखा, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इन राज्यों में एनडीआरएफ की पर्याप्त टीमें तैनात की गई हैं और जरूरत पड़ने पर और टीमें भेजी जा सकती हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विकास के लिए वित्त पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर लौटे स्वदेश। राष्ट्रीय सभा द्वारा बजट संबंधी आर्थिक विधेयक और राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक पारित। देश के 31 जिलों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि। मास्क पहनने और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने की अपील। और भारत के हिमाचल प्रदेश में हालिया बारिश की वजह से करीब 69 लोगों की हो गई है मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।